ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम् सातवां स्कंद चौदवां अध्याय अध्याय का नाम आदर्श पारिवारिक जीवन श्लोक संख्या 41।
पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्या तुष्ट्या भक्ते वेदं हरिस्तनुम्।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की।
पुरुषेषु
पुरुषों में अपि निसंदेह
राजेन्द्र
हे नृपश्रेष्ठ
सुपात्रम
श्रेष्ठ पुरुष
ब्राह्मणम
योग्य ब्राह्मण को
विदु
जानना चाहिए
तपसा
तपस्या से
विद्या
विद्या से
तुष्टया
तथा तुष्टि से
धत्ते
धारण करता है
वेदम
वेद नामक दिव्य ज्ञान
हरे
पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान का
तनुम शरीर या अभिव्यक्ति। हे राजन सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम माना चाहिए क्योंकि वह तपस्या वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। तात्पर्य हमें वेदों से पता चलता है कि भगवान परम पुरुष हैं। प्रत्येक जीव व्यष्टि पुरुष है और भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं। वैदिक ज्ञान में पटु तथा दिव्य विश्वों में पारंगत ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है क्योंकि ब्राह्मण इतना ही जानता है कि वह ब्रह्म है पदार्थ नहीं, किंतु वैष्णव यह जानता है कि वह ना केवल ब्रह्म है अपितु परम ब्रह्म का नित्य दास भी है। अतः वैष्णव की पूजा मंदिर में की जाने वाले अर्च विग्रह की पूजा से श्रेष्ठ होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। सारे शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान माना जाता है जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ वैष्णव होता है। किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि वैष्णव अपने को ईश्वर मानता है क्योंकि यह अपराध है। यद्यपि ब्राह्मण या वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान प्राणी माना गया है किंतु ऐसा भक्त भगवान का सदा आज्ञाकारी दास बना रहता है और कभी भी उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करना चाहता जो उसे परमेश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण प्राप्त हो सकती है।
ओम ज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
हरे कृष्ण आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में। तो इस अध्याय का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन और ये इस श्लोक का सेकेंड लास्ट श्लोक है। अब कल ये अध्याय समाप्त हो जाएगा और पिछले कुछ श्लोकों से 35 नंबर श्लोक से भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन किया जा रहा है नारद मुनि के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को। नारद मुनि ने पहले बताया युधिष्ठिर महाराज को 35 श्लोक से बता रहे हैं कि इस पूरे संसार में जिस व्यक्ति को हमें सब कुछ अर्पण करना चाहिए है वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। फिर उन्होंने उदाहरण दिया जैसे राजसूय यज्ञ में भी हमने कृष्ण को ही सबसे पहले पूजा की। फिर बताया कि कृष्ण सभी जीवों के स्रोत हैं, वो एक वृक्ष के समान है और अलग अलग जो जीव हैं उस वृक्ष के पत्ते और शाखाएं हैं और हर जीव की उन्होंने अलग अलग श्रेणियों में से हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं और जीव परमात्मा के विषय में जान पाएगा अपने ज्ञान और तपस्या के बल पे। जो जितना ज्ञान और तपस्या का अनुशीलन करेगा उसी मात्रा में परमात्मा अपने आप को प्रकट करेंगे। और फिर ये बताया कि सभी जीवों में अलग अलग जिनको शरीर मिलते हैं यह शरीर एक घर के समान है, मकान के समान है जिसमें जीवात्मा है। इन सब शरीरों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है वो है ब्राह्मण। फिर बताया था कि ब्राह्मण के क्या क्या उनके गुण है कि अगर अर्चवृह की जो पूजा करता है लेकिन ब्राह्मणों का आदर नहीं करता, उनसे द्वेष करता है तो उसकी पूजा का कोई लाभ नहीं बताया गया। और आज के श्लोक में बताया गया है पुरुषेवपि राजेंद्र, जितने भी पुरुष हैं। श्री प्रभुपाद तात्पर्य की पहली लाइन में बता रहे हैं कि हर जीव एक व्यष्टि पुरुष है, इंडिविजुअल पर्सन है। और इसी ढंग से भगवान श्री कृष्ण भी एक व्यक्ति है, परम पुरुष है। सभी पुरुषों में राजेंद्र यानी कि युधिष्ठिर को कह रहे हैं सुपात्र, सबसे योग्य, द बेस्ट पर्सन इज ब्राह्मण, सबसे योग्य। और उसकी योग्यता कहां से आई? तपसा विद्या तुष्टया दत्ते वेदम, तपस्या से, विद्या से, संतुष्टि से उन्होंने वेद के ज्ञान को धारण किया है और वो इतने सुपात्र हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं हरे स्तनों कि वो मेरे समान ही है, मेरा प्रतिनिधि है। ये भगवान राजन हरे तनु, हरि के तनु के समान है, हरि का ही प्रतिनिधि है, हरि के ही समान है। तो ब्राह्मणों की ये हमें महिमा को स्थापित किया गया। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भक्तों का और भगवान का गुणगान है और भक्तों के गुणगान में कहीं मैं देखते हैं कि भक्तों का नाम आता है, भक्तों के परिवार का वर्णन आता है, उसके पुत्र, उसके पुत्र, उसके पुत्र। हम बोर हो जाते हैं, क्यों बताया जा रहे हैं इतने पुत्र, क्या है, हमें क्या लेना देना है। बड़ी हैरानी होती है, परीक्षित महाराज जी को 7 दिन है, अभी मृत्यु उनको आने ही वाली है, अच्छा आखिरी दिन तक पूछ रहे हैं, अच्छा उनके बारे में बताओ। तो उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं सब कुछ, फिर उसका पुत्र ये हुआ, उसके इतने पुत्र थे, उसके इतने पुत्र थे। भागवत तीसरे स्कंद में देखते हैं विदुर जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास और विदुर भी अब सब कुछ घर बार छोड़ के आ गए हैं वानप्रस्थ आश्रम में है और मैत्रेय मुनि तो संन्यास आश्रम में है। तो जो बिल्कुल वैरागी लोग क्या बात कर रहे हैं, विदुर ने प्रश्न पूछा कि स्वयंभू मनु और सतरूपा ने किस प्रकार से प्रजा उत्पन्न की। अरे दो वैरागी लोग बोले कैसे प्रजा उत्पन्न की, फिर उसमें खास तौर उसके बारे में बताइए जो कर्दम मुनि और देवहूति माता के स्वयंभू मनु की पुत्री थी देवहूति, उसका विवाह कर्दम मुनि से, उसकी एक संतान, उसके बारे में बताइए। तो भक्तों का वर्णन है, तो इसका मतलब है कि भक्तों का भागवत जैसे अमल पुराण में वर्णन है, उनके पूरे आगे जीनियोलॉजी आगे पूरी वंश का वर्णन है, यानी कि जो कुछ भी भक्त लोग करते हैं वो परम पवित्र है, तभी तो भागवत में प्रकट हो रहा है। और ये जो ब्राह्मण है वो कैसे श्रेष्ठ बने, अपने जन्म से नहीं अपने गुणों से, तपसा विदया तुष्टया, और इसलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। ब्राह्मण का सबसे पहले गुण है कि वो तुष्ट संतुष्ट रहता है। असंतुष्टि तब रहती है जब हमारे में कुछ भौतिक इच्छाएं हो, हमें लगे कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिलना, आई डिडंट गेट व्हाट आई डिजर्व, मैं जिसके योग्य हूं वो मुझे मिला नहीं, तो हम असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण ज्ञान में है, पूर्ण रूप से ज्ञान का ये लक्षण है कि वो जानता है कि जो जितनी भौतिक सुविधाएं मेरे भाग्य में है इससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए मैं संतुष्ट हूं, और उसको जो जिस अवस्था में है उसी में रहकर वो परम पुरुष को जानने का प्रयास करता है और साथ में बद जीवों के उद्धार के बारे में सोचता है। अगर वो खुद ही असंतुष्ट है तो दूसरे के उद्धार के बारे में कैसे सोचेगा, वो अपने बारे में सोचता रहेगा। ये तो हम सबकी हालत है, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। ब्राह्मणों को हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा लोग 200,000 गाय दे देते थे दान में, बड़ा बड़ा धरती दे देते, जाओ सब आपकी है। लेकिन ब्राह्मण क्या करते थे, वो जो उनको अपने आप प्राप्त होता भी था उसमें संतुष्ट नहीं रहते थे, संतुष्ट तो रहते ही थे, जो उनको मिलता भी था वो उसको बांट देते थे, वो उद्देश्य के साथ अपने आप को दरिद्र अवस्था में रखते थे ताकि हम अपना पूरा जो चेतना है पर हित में लगाएं, यानी कि उसका हम भोग करना प्रारंभ करते हैं। तो इन्हीं गुणों के कारण वो भगवान को बहुत प्रिय है और दूसरों के लाभ के बारे में सोचते हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। इसलिए हम देखते हैं चाणक्य पंडित जो थे उन्होंने क्या बोला कि अगर जिस राज्य में जो एडवाइजर है, जो मंत्री है, अगर वो झोंपड़ी में रहेगा तो उस राज्य की प्रजा महलों में रहेगी, और जिस राज्य का मंत्री महलों में रहेगा प्रजा झोंपड़ी में रहेगी। यही हम सबकी हालत है आज के राज्य में कि राजा लोग और मंत्री लोग तो महलों में रह रहे हैं और बेचारी प्रजा चाल में रह रही है, एलआईजी फ्लैट्स में रह रही है। तो ये ब्राह्मणों का ही कर्तव्य, और ये ब्राह्मण की जो शुद्धता है यही पूरी वैदिक संस्कृति की जड़ है, इसी से पूरा, और ये बहुत आवश्यक है, पूरा वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण की शुद्धता पर निर्भर करता है, क्योंकि वो पूरे समाज के हेड बोले जाते हैं, सबको वो परामर्श देते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं। अगर वो ही शुद्ध नहीं होंगे तो पूरी संस्कृति कैसे पनपेगी, और यही वैदिक संस्कृति के पतन का कारण है कि ब्राह्मण शुद्ध नहीं रहे। तो ब्राह्मण जब अपने आप को शुद्ध रखता है तो वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। सभी शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मणों की क्या स्थिति है भागवतम के अलग अलग स्थानों में। भागवतम के पांचवें स्कंद में पांचवें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ऋषभ बता रहे हैं कि दो प्रकार की प्रकट शक्तियां आत्म तथा जड़ पदार्थ में से जीव शक्ति वनस्पति घास वृक्ष तथा पौधे जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, जीव शक्ति जड़ से श्रेष्ठ है। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पुरुष पशु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से भूत प्रेत क्योंकि उनकी कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर, किन्नरों से असुर, असुरों से देवताओं, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र जैसे कि राजा दक्ष, और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन हैं। चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूं इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। सारे जीवों का इवोल्यूशन बता दिया, सब जगह लेके ब्रह्मा जी तक पहुंचा दिया, फिर बोल दिया ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं, फिर बोला कि मुझसे भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण। नारद मुनि से एक बार भगवान का वार्तालाप चल रहा था तो भगवान ने नारद मुनि से क्वेश्चन आंसर किया, बोलो पंचभूतों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। नारद मुनि ने उत्तर दिया पृथ्वी। पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ क्या है। नारद मुनि ने उत्तर दिया सागर। सागरों में उस सागर को अगस्त मुनि ने एक ही घुट में पी लिया तो कौन सर्वश्रेष्ठ है। नारद मुनि ने उत्तर दिया अगस्त मुनि। वो अगस्त मुनि सप्त ऋषियों में एक ऋषि है जो कि पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो कौन सा श्रेष्ठ है? ब्रह्मांड के अगस्त मुनि। बोले ब्रह्मांड। बोले उस ब्रह्मांड में मैंने वामन अवतार में एक ही पांव से उसको पूरा का पूरा घेर लिया, तो कौन श्रेष्ठ है? बोले आप। बोले और मैं सब भक्तों के हृदय में रहता हूं, तो कौन श्रेष्ठ हो? बोले आपके भक्त। सीधा। तो ये है पूरा सभी जीवों में सुपात्रम ब्राह्मण, और भगवान इसको स्थापित करते हैं। भगवान भागवतम में और अन्य पुराणों में दिखाते हैं कि कैसे वो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वैष्णवों की पूजा करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि भगवान को ये प्रिय क्यों है। भगवान तो सब जीवों के समान सबसे ही प्रेम करते हैं, लेकिन अपने भक्तों से और ब्राह्मणों से विशेषकर प्रेम करते हैं। ब्राह्मण मतलब याद रखें जन्म से नहीं, गुणों के आधार पर। तो क्यों करते हैं? क्योंकि यही ब्राह्मण और वैष्णव भगवान का जो भौतिक सृष्टि का उद्देश्य है रचना करने का, उसको पूरा करते हैं। भौतिक सृष्टि को रचने का उद्देश्य क्या था? कि बद्धजीव शुद्ध हो और वापस उनके वापस धाम में आए। इसी ढंग से ये जो उद्देश्य है बिना ब्राह्मण और वैष्णवों के नहीं हो सकता। और दूसरा, वैष्णव अपने गुणों से भगवान के प्रेम को आकर्षित करते हैं, भगवान से स्वतः ही आकर्षित होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि किस ढंग से कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। जब सुदामा द्वारका में गए अपने पत्नी के कहने पर, तो बड़े बड़े तीन द्वारों से उसको निकलना पड़ा सुदामा जी का। सुदामा जी की हालत बहुत खराब थी, बहुत ही दरिद्र अवस्था में, फटे पुराने कपड़े, और गए तीन बड़े द्वारों से निकले और देखा कि बहुत सुंदर शहर है, 16,000 महल बने हुए हैं बड़े बड़े, और उनको तो आंखें जगह चौंध हो गए, और अपने आप पता नहीं किस महल में वो घुस गए। और जिस महल में घुसे तो उनको लगा वाह, उनको लगा मैं तो बिल्कुल आनंद के सागर में गोते लगा रहा हूं। और फिर दूर से भगवान ने देख लिया, भगवान रुक्मिणी के साथ बिस्तर पे बैठे थे, भगवान ने देख लिया मेरा मित्र आ रहा है। भगवान भाग के गए और उन्होंने सुदामा का आलिंगन कर लिया। भागवत में वर्णन आता है कि परम पुरुष तो स्वयं रसराज है, लेकिन जैसे उन्होंने सुदामा का आलिंगन किया उनका आनंद और बढ़ गया, और सुदामा को पकड़ के लाए, अपने बिस्तर पे बिठाया और भाग कर गए, खुद गए अपने मित्र के लिए कुछ जलपान और फल लेके आए। इतने नौकर चाकर हैं भगवान के, खुद गए लेकर आए। और फिर भगवान ने क्या किया, क्योंकि वो ब्राह्मण है और एक साधारण पुरुष का वो रोल प्ले कर रहे हैं, उनके चरणों का अभिषेक किया और अपने चरणों को उस चनामत को सर पे डाला, और फिर सुगंधित लेप उगुरु और चंदन का लेप उनके शरीर पे किया, फिर अगरबत्ती और दिए के साथ उनकी आरती की। इस ढंग से पूर्ण रूप से उनकी पूजा की सभी के सभी, और रुक्मिणी जी पूरा चामर ढुला रही थी, सारी की सारी पटरानियां सोच रही थी ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका इतना आलिंगन किया, इतनी पूजा की जा रही है। लेकिन ये कृष्ण के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति ये आदर और प्रेम है। इसी ढंग से हम देखते हैं जब हरिदास ठाकुर क्योंकि लीला में वो यामन परिवार में थे, और इसलिए उनको अनुमति नहीं थी कि वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर सके, हालांकि वो नामाचार्य है। उन्होंने कोई ऐसे जुगाड़बाजी भी नहीं की, आपको मालूम नहीं मैं नामाचार्य हूं, आप तो घुसते तो मुझे अंदर, सब लोग मेरी थी पूजा करते हैं, आपने हमें अंदर नहीं जाने देते। बोला ठीक है, योग्य ही नहीं। वो तो चैतन्य महाप्रभु से दूर से प्रणाम करते थे कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन उनसे मिलने आते थे। ठीक है, आप दर्शन करने नहीं आ सकते, मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। ये है भक्तों की महिमा, प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु आते थे उनका दर्शन कर ले, और महाप्रभु उनको छूना चाहते थे तो हरिदास ठाकुर दूर भागते थे, मुझे मत छूए, मैं बहुत अपवित्र और पतित हूं। नामाचार्य जी का उनको टाइटल मिल भी गया तब भी वो अपने आपको यम नहीं समझ रहे हैं कि मैं बहुत पतित हूं, नहीं 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 मुझे मत छूए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, मैं आपको छूना चाहता हूं आपको। प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र हईते, तोमार पवित्र धर्म नाही आमाते। महाप्रभु ने कहा मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे पवित्र कर्म मुझ में नहीं है, मैं तुम्हें स्पर्श करके पवित्र होना चाहता हूं। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ये भगवान और भक्त आपस में आदान प्रदान है। भक्त सोच रहे कि मैं अशुद्ध हूं मुझे मत छूए, और भगवान सोच रहे हैं मुझे इतने सारे अशुद्ध जीवों के हृदय में रहना पड़ता है, मैं अशुद्ध हो गया हूं, और अपने आप को शुद्ध करने के लिए अब आप जैसे भक्तों का मुझे संग चाहिए, इसलिए मैं आपको स्पर्श कर रहा हूं। भगवान अपने आप को अशुद्ध मान रहे हैं क्योंकि हम जैसे पतियों के हृदय में रहते हैं, गंदी गंदी हमारी इच्छाएं, भगवान को सब नोट करना पड़ता है किनका संग कर रहे हैं। बोले इसलिए मैं अशुद्ध हो गया हूं, और आप जैसे शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर बोले उसको स्पर्श करके मैं आपको शुद्ध कर रहा हूं। यह है भगवान की विनम्रता। तीसरे स्कंद के 16 अध्याय में भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी योग्यताएं हैं कि जहां मेरे चरणों की धूल पड़ती है वो स्थान पवित्र हो जाता है, लक्ष्मी सदा मेरे वक्ष स्थल पर निवास करती है। लेकिन मेरी सारी योग्यता का कारण मालूम है क्या है? ब्राह्मणों की कृपा। भक्त लोग कहते हैं कि मेरे अंदर जो सद्गुण विकसित हो रहे हैं ये भगवान की कृपा है, और भगवान कहते हैं कि मेरे जितने भी ऐश्वर्य हैं, लक्ष्मी जिसकी वजह से पूरा संसार भाग रहा है, और मेरे अंदर ये जो पोटेंसी है कि मेरे चरणों की धूल कहां भी पहुंच गई वो स्थान पवित्र हो जाता है, अगर चंडाल भी मेरे नाम का जप कर लेगा वो शुद्ध हो जाता है, ये पोटेंसी कहां से आई? ये सब ब्राह्मणों की कृपा से आई है, वैष्णवों की कृपा से। सोचिए भगवान ये क्यों इतना ब्राह्मणों की महिमा को गा रहे हैं, और भगवान अपने उदाहरण से स्थापित नहीं कर रहे कि हमें ब्राह्मणों और वैष्णवों की पूजा करनी चाहिए, बल्कि कुछ लीलाओं में भगवान ऐसा दिखाया कि भक्त उनके भक्त उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान राम जी को लंका जाना था तो पूरे सागर के ऊपर उनको पूरा पुल बनवाना पड़ा, नहीं हनुमान जी कैसे गए? एक छलांग मारी पहुंच गए। कौन ज्यादा शक्तिशाली हुआ, हनुमान जी की राम जी? हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी को शक्ति राम जी ने ही दी, लेकिन पहुंच गए। अच्छी ढंग से हम देखते हैं कि पुराणों वर्णन आता है जब खंडव वन में अग्निदेव ने सोचा कि इसको पूरा खा लिया जाए तो पूरे वन में अग्नि लग गई, आग लग गई, और साथ में कृष्ण और अर्जुन भी वहां पे थे और कृष्ण ने भी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, तो जो उसी वन में मैं दानव रहता था तो मैं दानव वहां से भागा, और भागते उसे क्या मत देखा सामने अर्जुन है, तो उन्होंने अर्जुन की शरण ली। तो जब अग्निदेव ने देखा और भगवान ने देखा कि इस मैं दानव जिनको कि वो वध करना चाहते थे उसने अर्जुन की शरण ले ली है, दोनों ही पीछे हट गए। वहां पर कोई ईगो क्लैश नहीं हुआ कि अर्जुन इसको शरण मत दो, हमने इसका वध करना है। देखा भगवान ने देखा मेरे भक्त ने शरण दे दी, अब क्या ठीक है वापिस आ गए। फिर मैं दानव ने अर्जुन का धन्यवाद बोला, और मैं दानव ने बोला कि आपके लिए क्या कर सकता हूं? नहीं, अर्जुन ने बोला कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान मैदानों से बहुत प्रसन्न हुए कि इसने मेरे भक्त की शरण ली है, तो भगवान ने मैदानों को बोला कि तुम एक सेवा करो, युधिष्ठिर के लिए बहुत रहस्यमयी महल बनाओ। तो वहां श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की कृपा से भक्तों की सेवा का अवसर प्रदान होता है। मैं दानव था वो तो अर्जुन तो उनसे सेवा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान इसलिए संतुष्ट हो गए कि इस असुर ने मेरे भक्त की शरण ली है। तो एक पिता बहुत प्रसन्न होता है अगर पुत्र उनसे भी आगे बढ़ जाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं भक्त की कृपा भगवान की कृपा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए इसी भागवतम तीसरे स्कंद में भगवान कह रहे हैं, ये वर्णन है चार कुमारों भगवान के बीच में वार्तालाप होती है, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली हुई आहुतियों से मुझे इतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुखों में अर्पित की जाती है। यज्ञ जो है उसको भगवान का मुख बताया जाता है, जब हम स्वाहा करके कुछ अर्पण करते हैं वो सीधा भगवान के मुख में जा रहा है। बोले ठीक है, वो भी एक मुझे संतुष्ट करने का तरीका है, लेकिन उससे असंतुष्टि तब होती है जब घी से सिक, देसी घी कोई रिफाइंड तेल नहीं, गाय का देसी घी से सिक फर्स्ट क्लास बना हुआ घी का जो पदार्थ है ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किया जाए, तो उससे भगवान को संतुष्टि हो जाती है। तो जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं ऐसे ब्राह्मण। तो यहां बता रहे हैं कि जिस प्रकार वैष्णव जो है भक्त है बिना भगवान को अर्पण किए कुछ नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार से भगवान को भी जो कुछ अर्पण किया जाता है वो पहले अपने भक्तों के मुख में अर्पण करते हैं। भगवान पहले अपने भक्तों को मुख को देते हैं फिर उनसे खाते हैं। अब समझ रहे भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता है। भक्त बोलते भगवान आप भोग लगाइए, बोला ठीक है पहले आपके मुख में डालूंगा फिर मैं खाऊंगा। तो भगवान को आनंद आता है कि अगर कोई भक्त ब्राह्मणों को खिलाता है तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं खा रहा हूं और उससे मेरी संतुष्टि होती है। ये इस ढंग से भगवान ब्राह्मणों को मान देते हैं और ब्राह्मणों की पूजा को स्थापित करते हैं। ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को इतना आदर और इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? इसके जैसे पहले बताया कि पहला कारण ये है क्योंकि एक तो भगवान को वो प्रिय है, भगवान एक पुरुष है और भगवान का वो मिशन पूरा कर रहे हैं इसलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। दूसरा भगवान स्थापित करना चाहते हैं कि इस वर्णाश्रम समाज में वर्णाश्रम का पालन तभी हो पाएगा, तभी लोग ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करेंगे जब वो ब्राह्मणों की स्थिति को समझेंगे। तो उसको अपने उदाहरण से और अपने लीलाओं से ब्राह्मण और भक्तों की स्थिति को स्थापित कर रहे हैं। देखिए जो दिन कल परसों अमूल्या को भी बता रहे थे, जो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होती है वो भक्तों की कृपा से होती है। भक्ति की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, वो भक्तों के हाथ में है। बहुत ही कम ऐसे चुनिंदा केसेस होंगे जिसमें भगवान ने स्वयं किसी को भक्ति प्रदान की है। मुख्यतः भक्ति भक्तों के द्वारा दी जाती है, भक्तों की एजेंसी, भक्ति की एजेंसी केवल भक्तों के पास है, भगवान के पास नहीं है। क्योंकि भक्ति का जो विषय है वो कृष्ण है और भक्ति का जो आश्रय है वो भक्त है। तो इसलिए गुरु को आश्रय विग्रह बताया गया है, वो हमें भक्ति प्रदान करे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा बीच। तो इसलिए भक्तों की महिमा को स्थापित करना आवश्यक है। जब तक हम उनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब तक कोई महाभागवत ये नहीं सोचेगा इस जीव का उद्धार करना है तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। छाड़ी वैष्णव सेवा निस्तार पहचे के बाद, वैष्णव सेवा के बिना हमारा निस्तार नहीं हो सकता, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। उन वैष्णवों की महिमा क्या है इसलिए भगवान स्थापित कर रहे हैं। ये तो बस जीव, चाहे वो कीड़े मकोड़े की योनि में क्यों ना हो, वो अपने आप को परम पुरुष मानता है। वो सोचता है कि पूरा विश्व मेरे भोग के लिए बना है ना। एक मच्छर हमारे यहां है, बहुत मच्छर है ना, वो जो हमारे आसपास घूमता है तो खून चूसता है, हमें गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आता है, क्यों नेट लगा रहे हो भाई, अपने ऑटो मस क्यों लगा, ये खून मेरा है। हम बोले कैसे आपका खून मेरा भैया, खून को बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, खाना खाता हूँ, उससे ज्यादा खून बनता है, खून मेरा है। बोले कैसे खून आपका, मेरा पूरा हक है। बोले मैं भोगता हूँ। हम सोचते हैं हम भोगते हैं, तो एक द्वेष है। हर किसी की भी इच्छा नहीं है भगवान की पूजा करें, किसी की भी इच्छा नहीं है। अगर कोई बड़े जी भगवान के पास आता भी है अपने भोग की वृद्धि के लिए आता है, तो ऐसे मेंटेलिटी ऐसी चेतना वाला व्यक्ति कैसे भगवान की पूजा करेगा। केवल एक ही उपाय है, अगर महाभागवत की कृपा हो जाए, महाभागवत की हम शरण ग्रहण करें। तो उनकी शरण ऐसे अहंकारी जीव, एक मच्छर में इतना अहंकार, एक बैक्टीरिया में भी इतना अहंकार, जो अपने आप को परम पुरुष मान रहा है, तो जब वो मनुष्य होने में पहुंचेगा उसको ज्ञान प्राप्त होगा और फिर जब वो महाभागवत की शरण ग्रहण करेगा तब उसके मुक्ति के द्वार खुलेंगे। इसलिए भगवान स्थापित कर रहे कि साधारण मत माने। आचार्य माम विजानीयम ना अमन्यत करे चेत ना मर्त्य भूते अनुसूये सर्वदेव मयो गुरु। जो एक गुरु है आचार्य मां मेरे जैसा ही उसको मानो और उनका कभी भी अनादर करना करो। ना मन्य कर ही चित, किसी भी परिस्थिति में आचार्य का अनादर मत करो। ना मर्त्य बुद्धि, उसको साधारण व्यक्ति मत समझो। निखले में साधारण लग रहे हैं हमारी तरह, दो हाथों वाले, वो उनकी चतुर्भुज नहीं है, दो पांव वाले, चलते हैं फिरते हैं सोते हैं खाते हैं, इनको कभी भी साधारण ना मानो। असूय, कभी उनसे द्वेष मत करो। सर्वदेव मयो गुरु, सारे सभी देवताओं का सम्मिशन टोटल है वो गुरु। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मत भक्त पूजाभिधिका, मेरी पूजा से अधिक है मेरे भक्तों की पूजा। तो इसलिए यहां बताया गया है कि वैष्णव की पूजा अर्च विग्रह की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार श्रील प्रभुपाद दिल्ली में आए थे और दिल्ली में आए तो राधा पार्षदी थे वहां पे, उस मंदिर में बैठे थे और अभी लेक्चर शुरू होने से पहले गुरु पूजा होती थी, तो प्रभुपाद व्यास आसन पे बैठे और गुरु पूजा शुरू हुई। तो जब गुरु पूजा शुरू हुई तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके एक शिष्य प्रद्युम्न नहीं है, तो पूछा प्रद्युम्न कहाँ है। हरीश्वरी प्रभु अपनी डायरी में लिख रहे हैं, तो बोले प्रद्युम्न कहाँ है। बोले प्रद्युम्न अभी अभी उनकी नई नई शालिग्राम शिला आई है, उसकी पूजा कर रहे हैं। प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, फर्स्ट गुरु पूजा देन शालिग्राम पूजा, दिस इज नॉनसेंस। प्रभुपाद बहुत गुस्सा किया, यानी कि शालिग्राम पूजा कर रहे हो, यहाँ गुरु की पूजा हो रही है उसको छोड़ के अपने कमरे में शालिग्राम पूजा कर रहे हैं। इसलिए जो प्रभुपाद वास्तव में एक आश्रय विग्रह है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद वास्तव में जगत गुरु है। ये कृष्ण की अतीव कृपा होती है, अतीव करुणा है कि वो अपने आप को इस प्रमाणिक आचार्य के रूप में प्रकट करते हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रतिदिन गुरु पूजा होती है, कई नए लोग ऐसे आते हैं, घुसते हैं, भगवान को देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कौन है ये, कहीं बोलते साक्षात बैठे हैं, प्रणाम कर देते हैं और फिर देखते हैं सब लोग इतना नाच के हो रहे हैं, पता नहीं क्या है, और कोई उनके हाथ में फूल पकड़ा देता है, बोले क्या करते, जाओ जाके अर्पण कर देता है।
कई लोगों थोड़ी सजा होती है पूरा झुकी जाते हैं, कई चरणों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो नहीं सोच रहे क्या कर दिया उन्होंने, बहुत आगे बढ़ गए, भक्ति तो बहुत शुरू हो गई, परम भागवत की उन्होंने शरण ग्रहण कर ली और जय प्रभुपाद का गुणगान सुन रहे हैं वो। तो प्रभुपाद आश्रय विग्रह है हमारे, हमारे मुक्ति का एकमात्र जो एक उम्मीद है वो है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के जहां प्रसाद भाई ए भव तरिया जाए, कृष्णा प्राप्ति है जहां ते। तो इनकी कृपा से ही हम इस भव सागर से निकल सकते हैं। तो कभी भी इनको साधारण पुरुष नहीं मानना चाहिए, कभी इनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, आचार्य माम विजानीय, इनको मेरी समान ही मानना चाहिए। और प्रभुपाद कितने प्रिय होंगे कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण इसलिए प्रिय है, भक्त वैष्णव क्यों प्रिय होते हैं, क्योंकि वैष्णव स्वयं कष्ट उठा के भगवान के मिशन को पूरा करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय, कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। इसलिए हमें देखते हैं प्रभुपाद के जितने शिष्य हैं वो प्रभुपाद गुरु पूजा को बहुत महत्व देते हैं। इंजोलियंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहीं भी हो, विश्व किसी भी कोने में क्यों ना हो, गुरु पूजा जरूर करते हैं। और जब हम मंदिर में आते हैं देखते हैं कि खासकर जो मंदिर में रहने वाले भक्त गुरु पूजा में नहीं है तो महाराज को बहुत क्रोध आता है। बहुत साल पहले एक मंदिर में हमारे भक्त जो गुरु पूजा में नहीं आए तो महाराज ने क्या किया, वॉक से आए सीधा उसके कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे भागा और कमरे गए तो भक्त सो रहा था, उसको डांट के उठाया कि जिसके घर में रह रहे हो, जिसका नमक खा रहे हो, उसकी पूजा में नहीं आ रहे। बहुत गुस्सा है। और हमें सोचना चाहिए हमारे जो पालन करता है प्रभुपाद ही। जब मृगारी को नारद मुनि ने बोला धनुष तोड़ दो तो मृगारी हिचकिचा रहा था, बोले तोड़ो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का पालन मैं करूंगा। नारद मुनि बोले मैं पालन करूंगा। नित्यो नित्यानाम चेतो चेतनानाम, भगवान सबका पालन करते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रभुपाद हमारा पालन कर रहे हैं, ऐसा सौभाग्य कहां होगा भक्तों का, रोज 9 बजे दिन में 3-4 बार गर्म गर्म प्रसाद मिल जाता है फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं करना पड़ा आराम से, उनकी पूजा भी ना करें। अरे एटलीस्ट मटेरियली सोच रही, मेरे अंदाते हैं भाई मेरे बाप मेरे अंदाता सब कुछ चाहिए, पूरे उत्साह से मैं गुरु पूजा करना चाहिए। यही नहीं बल्कि प्रभुपाद की ग्लोरी को हमें फैलाना है जगत को, वास्तव में जगत देखते नकली जगत गुरु घूम रहे हैं और लोग उनसे भ्रमित हो रहे हैं। आज आप कहीं भी चले जाओ प्रचार करना शुरू करते हैं, उनके घर में फोटो लगी होती है किसी की, बोले हमारे गुरु है। अरे बस पहली बार मिले तो फोटो पकड़ा दी, बोले गुरु बन गए। लोग हमारे भारत में वैसे सेंटिमेंटल होते हैं, हम एंटरटेन नहीं कर पाते, बोले गुरु हो गए हमारे। तो इसी ढंग से प्रभुपाद का घर घर में, बिना प्रभुपाद की शरण लिए उद्धार नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें प्रभुपाद की महिमा को समझना चाहिए। हर भक्त को जो इस्कॉन को बोलते हैं, इस्कॉन का मेंबर हो, हर भक्त को जानना चाहिए कि उसके जीवन में प्रभुपाद का क्या व्यक्तिगत रोल है। केवल औपचारिकता के लिए नहीं, गुरु की पूजा औपचारिकता से नहीं हृदय से होती है। जैसे कृष्ण ने सुदामा की कोई औपचारिकता से पूजा नहीं की, हृदय से पूजा की, अपने अश्रुओं से उन्होंने सुदामा के चरणों का अभिषेक किया। ऐसे गुरु आए हमारे दोपहर को 12 बजे, बोले आइए गुरु जी बैठिए, फटाफट बैठिए सोफे पे और आरती शुरू कर दी। इदम आर्ग्यम इम परम गुरुवे नमः, इदम आर्ग्यम इम परम गुरुवे नमः। अरे भैया मुझे पहले पानी पिला दो, दूर से पानी दिखा रहे हो। पहले गुरु आए हैं हृदय से बैठे, पहले उनको जल अर्पण करो हृदय से, यानी कि फॉर्मेलिटी के लिए बस आरती उतारते हैं हमें गुरु के, ना फॉर्मेलिटी के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए, ना मस्करी के लिए, फ्लैटरिंग के लिए, दिखाने के लिए मैं गुरु जी कितना अच्छा शिष्य हूं। ये हृदय की बात है, ये बंदे अगर हम समझेंगे नहीं गुरु का क्या मिशन है, गुरु हमसे क्या चाहते हैं, कैसे उनकी सेवा करनी है, उनकी वाणी को हम पूजे, तब जाके हम संबंध स्थापित होता है। और बिना ये संबंध स्थापित हुए उद्धार का कोई कोई तरीका नहीं है। ये ऊपरी ऊपरी औपचारिक और दिखावे से नहीं काम चलेगा, शुरुआत ऐसे हो सकती है लेकिन काफी वर्ष बिताने के बाद हमें सोचना चाहिए। जब तक हृदय से हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, कृतज्ञता तो पहला स्टेप है, प्रेम होना चाहिए, कृतज्ञता तो पहला स्टेप है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने प्रभुपाद को देखा नहीं, प्रभुपाद हमारे जीवन में थे नहीं, वो समय कुछ और था, नहीं नहीं प्रभुपाद अभी भी है। कितने ही ऐसे स्टोरीज हैं जिसमें प्रभुपाद के विग्रह ने बातचीत की है। अभी सेवा तुल्य प्रभु आए थे तो हम वही बात करते हैं, प्रभुपाद का विग्रह है इसको कैसे देखना चाहिए। तो बता रहे थे एक कथा, एक विदेश में एक माता जी आती पहली बार इस्कॉन मंदिर में, देखती ऐसे और झुकती है प्रभुपाद, हाँ वेस्ट वर्जीनिया में, न्यू वृंदावन में। तो जैसे प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, वेस्ट वर्जीनिया में क्या है कि वहां पे प्रभुपाद के ओरिजिनल शूज थे, वहां पे जो आप शूज देख रहे हैं यहाँ पे बने हुए, उसका ये तो उसका प्रिंट लिया हुआ है, ओरिजिनल शूज वहां थे प्रभुपाद के। प्रणाम किया, उसको अंदर से आवाज आई, उनको लगा जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं स्टील माई शूज, अरे जूते चुरा लो। और वो महिला थी, बड़ी धनी परिवार से थी, और उसने कभी ऐसा किया भी नहीं होगा, उसने जूते चुरा के बैग में रख लिए और चले गए, और पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया, प्रभुपाद के जूते ओरिजिनल शूज गायब हो गए और चले गए। फिर दो साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर से प्रभुपाद उसके सपने में आए कि मेरे शूज रिटर्न करके आ, कुछ लेना नहीं कोई लेना नहीं। फिर वो आई न्यू वृंदावन में, सारे भक्तों को बोले कि हाँ जी मैं आपको बताना चाहती हूँ ये, अरे वो शूज, अरे भाई कहाँ थे यार, कहाँ चले गए शूज, बोले पता नहीं क्या क्या हुआ, ये अजीब है, ये पता नहीं व्यक्ति कौन है, इन्होंने मुझे बोला कि जूते चुरा लो, उन्होंने चुरा लिए, अब बोला वापस कर, मैं वापस, मैंने कुछ भी नहीं किया, जूते को ऐसे कैसे रखा, तो ये पता नहीं प्रभुपाद क्या क्या लीला करते हैं इनसे। तो विग्रह हैं ये वास्तव में है, और जब प्रभुपाद हम आज्ञा प्रभुपाद के पर्पस को हम प्रार्थना करके पढ़ेंगे, ये पर्पस हमें रिवील करते हैं। जब उन्होंने भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू किया था 2010 में, तो जन्माष्टमी प्रभु आए, उन्होंने बहुत सुंदर बात बोले, बोले भक्ति शास्त्री करने का उद्देश्य ये है टू हैव इंटरनल इंटीमेट दर्शन ऑफ प्रभुपाद, प्रभुपाद के अंतरंग हम दर्शन करें प्रभुपाद के पर्पस के माध्यम से। तो प्रभुपाद है और हमारे जीवन में है, और अभी 13 अगस्त 1965 को प्रभुपाद गए थे जलदूत से, कहां गए थे अमेरिका, तो ये 50 साल होने हैं इस काम के, वो 50वीं वर्षगांठ है 13 अगस्त से, हरी बोल, 50 वर्ष पूरे हो गए, और आप पूरे धूमधाम से पूरे विश्व भर में इस कौन के 50वीं वर्षगांठ को मनाया जाएगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और हम ऐसे अधिकांश लोग 30-40 वर्ष के हैं, पता नहीं इस कौन के 100 वर्ष मनाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलेगा, है ना, 100 ईयर ऑफ इस कौन आई डोंट नो कितने लोगों को मिलेगा, छोटे बच्चे बैठे हैं इनको मिल जाए तब तक वो इस कौन में रहे, तो 50th ईयर सेलिब्रेशन एकमात्र मौका हमारे जीवन का, जान लगा दें अपने तन मन धन से प्रभुपाद की महिमा को पूरा बताने के लिए, फैलाने के लिए, और इस प्रचार को खूब बढ़ाने के लिए, इतना सुंदर अवसर है, सबको मालूम होना चाहिए प्रभुपाद कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये स्कॉन आंदोलन कितना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रिय, सबसे ज्यादा ये शुद्ध, ये आज देख सकते हैं, हमें देख सकते हैं कुछ कमियां हैं, निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, लेकिन इससे शुद्ध और कोई नहीं है, कितने लोग धक्के खा के फिर वापस आ जाते हैं प्रभु जी, यही सर्वोत्तम है। तो बहुत सुंदर अवसर है हमारे लिए कि आचार्य की पूजा हम करें, कैसे करें, उनके संदेश को फैला के भारी मात्रा में पुस्तक वितरण, भारी मात्रा में संकीर्तन, और नए नए तरीके हम सोचेंगे, हम से कितने लोग इस आंदोलन में भाग लेना चाहेंगे, इस कॉन 50 सेलिब्रेशन में, इतना उत्साह ज्यादा नहीं लग रहा, जोर से बोलिए हरी बोल। इसके लिए हर स्तर पर मीटिंग शुरू हो गई है और हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी इस प्रसंग में लिख रहे हैं कि आचार्य को साक्षात हरित्वेन मेरे समान ही माना चाहिए। इसके 3 कारण होते हैं कि आचार्य को हम भगवान क्यों माने। पहला, उनका मिशन और भगवान के मिशन में कोई अंतर नहीं है। क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद इसका, एम्बेसडर का, राजदूत है प्रभुपाद, एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दूसरा, कि वो हमेशा एब्जॉर्ब रहते हैं कृष्ण के विचारों में, इसका क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, हमेशा एब्जॉर्ब रहने से वो कैसे साक्षात हरित्वेन हो जाते हैं, हमेशा तल्लीन रहते हैं भगवान के चरणों में, हाँ आयरन रॉड इन फायर, अग्नि के समान हो जाते हैं। और तीसरा, भगवान के हृदय में निवास करते हैं और भगवान षट ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान की परिभाषा ही है षट ऐश्वर्य पूर्ण, वो उनके हृदय में निवास करते हैं, तो ये साक्षी भी साक्षात भगवान, साक्षात हरित्वेन। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में वार्निंग दे रहे हैं कि गुरु कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं मानता, गुरु हमेशा अपने आप को एक आज्ञाकारी सेवक मानता है, गुरु कभी भी भोग नहीं करेगा। एक भक्त, एक वैष्णव जब भक्ति प्रारंभ करता है उसे कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वो कभी भी उसका अगर भोग करेगा तो उसका पतन प्रारंभ हो जाता है ना। इसलिए हम सब वैष्णव, हम प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, सभी वैष्णव जो प्रभुपाद को यथारूप पालन करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, उनसे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, और सभी वैष्णवों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, हम कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। एक साधारण व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, जब वो भक्तों के संपर्क में आएगा, भक्तों के माध्यम से प्रभुपाद के संपर्क में आएगा। एक भक्त ने हिजूरनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा, महाराज क्या आप मेरा उद्धार कर देंगे? महाराज बोला, मेरे में क्षमता नहीं उद्धार करने की, मैं आपको प्रभुपाद तक ले जाऊंगा, प्रभुपाद आपका उद्धार कर देंगे। तो हम सबका कर्तव्य क्या है कि जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं हम उनको प्रभुपाद की शरण में लेके आए, लेकिन प्रभुपाद की शरण में लेकर आने के लिए हम सबका जो व्यवहार है बहुत सुंदर होना चाहिए। हमें देखना चाहिए जैसे जैसे हमारे वर्ष बीतते जा रहे हैं हमारे अंदर सद्गुण विकसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमें कई बार अपने प्रोजेक्ट की चिंता रहती है कि हाँ मेरी सेवा ये वो, लेकिन क्या सद्गुण भी विकसित हो रहे हैं कि नहीं? अब वैष्णव हमें बनना है इन गुणों वाला, तपसा विद्या तुष्टया, ये ब्राह्मण के गुण तो कम से कम विकसित होने ही चाहिए, तभी हम भगवान के प्रिय बनेंगे और तभी हम भगवान के प्रतिनिधि बन सकते हैं। तभी जो लोग हमें दान देंगे उनके दान, भगवत भक्त बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, दान उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो उस दान को स्वीकार करके हमें शुद्ध कर सके। अगर ब्राह्मण में गुण नहीं है उसको दान देने से कोई लाभ ही नहीं होगा। अगर जिसके मुख में भोजन डालने से वो भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, वो अपनी तुष्टि के लिए खा रहा बस, ठीक है जी। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद किसी लाइफ मेंबरशिप के प्रोग्राम में गए, उनके साथ भक्त भी थे और भक्तों ने खूब पाया। वापिस आए तो एक भक्त रात को चिल्ला रहा खूब जोर से, बोले पेट में दर्द हो रहा है। प्रभुपाद बोला, क्यों इतनी पूड़ियां खाई थी तुमने? 25 पूड़ियां खाई थी। बोले प्रभुपाद क्या करूं, वो इतना खिला रहे। प्रभुपाद ने डांटा, मैं नेवर फोर्सिंग यू टू ईट, नेवर सर्विंग यू। वो तो अपनी सेवा कर रहे थे आपको देख के, आपको भी सेवा करनी चाहिए थी। जस्ट फॉर देयर प्लेयर यू शुड ईट। आप खा रहे हो अपना, आप कोई अन्य और अन्य और थोड़ी कर सकते हैं। भक्तों को पाना चाहिए उन भक्तों की संतुष्टि के लिए। दूसरा भक्त जोर से हंसने लगा, बोले आप क्यों हंस रहे हो, तुमने भी 17 पूड़ी खाई थी। बोले प्रभुपाद कैसे मान चला? बोले मैं सब गिन रहा था, प्रभुपाद बहुत अवसर रहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। कई बार भक्त लोग बुलाते हैं ब्रह्मचारी को, आइए प्रसाद पाई, वो देखते हैं बेचारा छोटा सा पतला सा ब्रह्मचारी है, 2-3 चपाती खाएगा और कितना खाएगा, खाते आंखें बड़ी होती जाती है, क्या हो रहा है। ब्रह्मचारी कहता है वो मेरा वामन रूप था, अब मैंने अपना वो हैरान हो जाते हैं कैसे इतना खा लेता है। ठीक है, हमें पाना चाहिए, ये आदान प्रदान है प्रसाद। फिर भक्तों को ये भी नहीं होना चाहिए, तो भक्तों को बुला रहे हैं उसको याद रहे हैं, अरे भैया सेवा की भावना से गाओ नहीं। भक्तों को लगना चाहिए खूब खिलाएं, उन्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन जो भक्त लोग पा रहे हैं उनको देखना चाहिए, याद करना चाहिए किसकी संतुष्टि के लिए पा रहा हूं मैं, गुरु और कृष्ण की, और इस भक्त को प्रसन्न करने के लिए। हाँ भरपेट पाए अच्छे ढंग से, लेकिन सेवा की भावना की बहुत सरल साइंस है। मतलब कि भगवान की प्रसन्नता के लिए फास्टिंग रखना आसान है, प्रसाद पाना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं पाना ठीक है, लेकिन प्रसाद पाते हुए भी ये चेतना रखना कि सेवा की भावना है, अच्छी चेतना चाहिए, बहुत प्रार्थनाएं चाहिए। तो ये भक्ति बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो कभी भी हमें ये जहां भोग की इच्छा आई वहां सब खत्म। तो जैसे कि प्रतिष्ठा मिलती है, कुछ भी हम करें तो प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना। अपने एक बार हमें बताया, कई बड़ी उदाहरण, सचिनेन्द्र महाराज जब आए थे और कुछ मेरी प्रशंसा कर रहे थे और मैं लाल पीला हो रहा था। सचिन महाराज ने बोला, क्यों इतने लाल पीला हो रहे? उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले कि ये जो प्रतिष्ठा है जहर के समान है, और जब तक आप भगवान शिव नहीं हो आप इसको पी नहीं सकते, इसको तुरंत ट्रांसफर कर दो, नहीं तो जहर के समान सारी भक्ति खत्म कर देंगे। तो जैसे कोई हमारा गुणगान करे, यानी कि उसका मुंह बंद कर दो, चुप रहो मेरा खत्म हो जाएगा, हम इसको बोले सब गुरु की कृपा है, ऑल ग्लोरीज टू शिव, ऑल ग्लोरीज, नॉट 90%। ठीक है, प्रभुपाद की कृपा है, मैंने भी तो मेहनत कम थोड़ी किया, जो मैं गाता हूं, जो मैं प्रवचन देता हूं, जो मैं श्रृंगार करता हूं, उसकी बात ही कुछ हो रहा है ना। मेरा भी तो कुछ है हुनर, बाकी तो कृपा तो है ही है, वो अलग बात है, ऑल ग्लोरीज, लेकिन अंदर मेरा भी कुछ है नहीं, वो पतन का कारण बनती है। एक बार ऐसे क्या हुआ कि एक गांव में अकाल पड़ गया, बिल्कुल सूखा, सबके सब लोग छोड़ के जा रहे थे, तो वहां केवल एक बंदर रह गया और 2 सारस पक्षी थे। तो इष्ट गोष्ठी की कैसे, तो सारस पक्षी बोले हम तो उड़ के जा रहे हैं दूसरे गांव में। तो बंदर बेचारा परेशान हो गया, तब उसने पूरे आकाश में देखा, उड़न खटोला दिखाई दिया उसको, वाह क्या आइडिया आया। बोले एक आइडिया बताऊं, हाँ बोले ये लो एक लकड़ी की डंडी, लकड़ी गया, इसको आप दोनों अपने चोंच से पकड़ लो, आप दोनों उड़ो, मैं लटक जाऊंगा। एक तो बोले करके देख लिया, ठीक है और कोई उपाय नहीं है। उन्होंने लकड़ी पकड़ी, उठा, उड़ गए, और बंदर ने पकड़ लिया और उड़ना शुरू हो गए, और चल गया मतलब चढ़ते आ रहे, उड़ते उड़ते उड़ गए, और जब गांव के बीच में से लेकर आए, लोगों ने देखा, अरे वाह ये तो कमाल हो गई, अरे बाप रे वाह कितना अच्छा तरीका है, तो कोई पेट्रोल नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कौन सा वो व्यक्ति है जिसका ये आइडिया है यार, कमाल हो गई, वाह उसको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, कमाल है, वाह 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 गुणगान हो रहा है, वाह वाह कौन है वो, कौन है वो व्यक्ति। और बेचारा बंदर बंदर कह रहा है, बोलो भैया कुछ तो बोलो, और वो दोनों पक्षी बोले कैसे बोले, मुंह में इतना गुणगान, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है, कितना उद्धार कर सकता है वो, वाह ये तो बहुत सुंदर। अब बंदर इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा है, बंदर बोले कि किसी को पता नहीं कौन है, अरे मैं हूं भाई, उससे रहा नहीं गया, उसने जोर से बोला मैं हूं वो, और धार से। तो इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। बहुत ही जगह में हम जो कुछ होते हैं हम सोचते हैं मैं करता हूं, लेकिन सब प्रकृति के तीन गुणों का खेल होता है। आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ होता है हम सोचते हैं मैं करता हूं, लेकिन वो सब कृपा का खेल होता है। सब वो जो सारस पक्षी है गुरु और कृष्ण के समान है, जो हमारे आगे ले जा रहे हैं, बहुत ही जगह से उड़ा कर ले जा रहे हैं, लेकिन बीच में हम कहते हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये सब मेरे कारण हुआ, और वो पतन का कारण बनता है। लोग तो तारीफ करेंगे ही करेंगे, वो अपना कर्तव्य पूरा करें, वाह 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 क्या आपने गाया, वाह 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 आपने क्या प्रवचन दिया, वाह 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 आपने क्या, आपके बिना ही, आपके कारण ही हमारी भक्ति चल रही है प्रभु जी, आप हमारे आश्रय निग्रह है, आप ये है, आप वो है, सब कुछ है, लेकिन उनको वो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। सब ट्रांसफर करो ऊपर तुरंत, थोड़ी देर भी रख लिया कि थोड़ी गुदगुदी हो जाए, फिर आगे ट्रांसफर कर देंगे, कुछ तो इसका कर लो तुरंत। ये बहुत केयरफुल है, ऐसी प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद को बहुत ऐश्वर्य मिले, लेकिन प्रभुपाद ने कभी उसका भोग नहीं किया। कहां प्रभुपाद दिल्ली में थर्ड क्लास डब्बे में आते थे, पैदल बैक टू कॉटेज मैगजीन बांटते थे, एक सांड पीछे चलाया प्रभुपाद को धक्का मार के चला गया, और प्रभुपाद अकेले पड़े हैं, कोई उनका शिष्य नहीं, अकेले सड़क में लूब में भी प्रभुपाद बेहोश हो गए, और प्रभुपाद सोचते थे मैंने क्या गलती की है, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। और फिर वही प्रभुपाद बड़े बड़े महल उनको मिले, बड़े बड़े रोल्स रॉयस गाड़ियां मिली, प्रभुपाद ने कभी उसका प्रॉब्लम किया। जब प्रभुपाद की गुरु पूजा होती थी तो एक बार एक रिपोर्टर ने बोला क्या अपने आप को इतनी पूजा करा रहे हो, द्वेष से बोला, बोले क्या करूं शास्त्रों में लिखा है पूजा ग्रहण करनी पड़ती है, और प्रभुपाद जब पूजा करते थे प्रभुपाद खुद करताल बजा के अपने गुरु परंपरा का स्मरण करते थे। तो जब एक बार एक आत्म तत्व प्रभु थे जो कि बहुत उनके पास मिस्टिकल साइंसेस थे, विज्ञान था उनके पास, जो नए नए आए तो दीक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे और गुरु की खोज में थे, जब वो आए और उन्होंने पहली बार प्रभुपाद को गुरु पूजा के दौरान देखा तो बोला ये है जेन्युइन गुरु, जो कि पूजा स्वीकार करके तुरंत ऊपर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस ढंग से हमें हमेशा ही चेतना बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के श्लोक से हम समझते हैं कि ब्राह्मणों की और विशेषकर वैष्णवों की क्या स्थिति है, और सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं गुरु, वो आचार्य के ही समान है, और उनकी पूजा भगवान की पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, उनकी कृपा भगवान की कृपा से भी महत्वपूर्ण है। किसी भी अवस्था में उनको साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वो साक्षात हरि के समान है, और श्री प्रभुपाद जी का हम सबके जीवन में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण रोल है, और इसकी महिमा का हमें भी पूरा इसको फैलाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और साथ में अंत में सावधानी बताई गई प्रभुपाद जी के द्वारा कि जो भी भक्ति के मार्ग में हमें कुछ भी ऐश्वर्य या प्रतिष्ठा या लाभ प्राप्त होते हैं उसका हम भोग ना करें, हमेशा आज्ञाकारी सेवक की भावना में रहें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स? Yes, for me.
बहुत धन्यवाद प्रजी। जैसे स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि तुष्ट तुष्टया ब्राह्मण की क्वालिटी होती है तुष्टया, कि संतुष्ट रह के और तपस्या विद्या से भगवान को संतुष्ट करता है, और आप जैसे बता रहे थे संतुष्ट खुद से संतुष्ट रह पाते हैं तभी औरों के बारे में सोच पाते हैं। तो एक भक्त ये जो क्वालिटी अपने अंदर किस प्रकार से मतलब कल्टिवेट करता है, किस प्रकार से लाने का प्रयास करता है?
या संतुष्टि की आत्म प्रसाद पहले मन की तपस्या है, सेटिस्फेक्शन। किसी परिस्थिति में हो हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना है, और दूसरा ये ज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान से संबंध ज्ञान, कि जितने मेरे भाग्य में से ज्यादा नहीं मिल सकता, जितने मेरे भाग्य में प्रतिष्ठा है, जितने मेरे भाग्य में भौतिक ऐश्वर्य है, धन है, सुख है, एक बूंद भी ज्यादा नहीं मिलेगी और एक बूंद भी कम नहीं मिलेगा, इसलिए इसके लिए प्रयास नहीं करना। तत् प्रयासो न कर्तव्यम, और सारे प्रयास कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार में उन्नति के लिए, उसमें संतुष्टि है। ज्ञान के अनुशीलन से, अच्छे ढंग से ज्ञान को श्रवण करके समझ के, और तभी मन भटके तो तपस्या, उसको संतुष्टि देनी, उसको एजुकेट करना है। ठीक है,
हरे कृष्ण जी। प्रदीप से भी परपट में भी प्रभुपाद बता रहे थे इसी परपट में कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, और आपने भी जो दो उदाहरण दिए, एक सुदामा भक्त का और हरिदास ठाकुर का, वो वैष्णव थे, तो लेकिन भगवान जो ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो फिर कैसे समझे कि मतलब वो ब्राह्मण वैष्णव है या मतलब वो ब्राह्मण है केवल?
अगर केवल ब्राह्मण भी हैं तभी भगवान को बहुत प्रिय है, अगर ब्राह्मण भी हैं, यहां तो श्लोक में ब्राह्मण है जो मैंने पांचवें स्कंध का श्लोक पढ़ा, वो ब्राह्मणों के बारे में है, तो ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है, वो जानता है कि मैं पदार्थ नहीं हूं, और जो ब्राह्मण है पूरे वर्णाश्रम में वो सबका वो गाइडेंस करते हैं और वो भगवान के मिशन में सहयोग देते हैं, उनके मार्गदर्शन से ही जीव का उद्धार हो सकता है, तो वो ब्राह्मण भी प्रिय है, लेकिन वैष्णव तो अति प्रिय है जो कि भगवान के प्रेम को वितरण करता है, तो भगवान उससे प्रेम करते हैं, ब्राह्मण भी प्रिय है लेकिन वैष्णव अधिक प्रिय है।
जो ब्राह्मण है वो भी विष्णु भक्त है? ब्राह्मण
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो ब्रह्म के स्तर तक ही रह सकता है, आगे वो पर्सनल ज्ञान में ना जाए, ब्रह्म साक्षात्कार तक उसका साक्षात्कार है।
ठीक है, तो एक एक जो एक ब्राह्मण है वो जरूरी नहीं है कि भक्त हो, एक भक्त है वो ब्राह्मण
निश्चित, एक वैष्णव स्वतः ही ब्राह्मण होगा, एक ब्राह्मण वैष्णव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यस मरा प्रभु है माइक दे पीछे से जाएंगे,
हरे कृष्ण। अभी जो चर्चा के विषय चल रहे हैं बहुत सुंदर है, आदर्श पारिवारिक जीवन, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये जो परिवार है कृष्ण के परिवार, ये कितने आदर्श हैं और किस प्रकार के आदर्श के साथ हम जीवन जीविका या भक्ति कर सकते हैं, इसके प्रमाण प्रभुपाद ने पूरा चक्र में बताए हैं। तो जैसे सन्यासी के गुणावली क्या है, ब्राह्मण के गुणावली क्या है, ब्रह्मचारी के क्या है, गृहस्थ क्या है, विभिन्न प्रकार के समझाएं। अभी हम जो परिवार में रह रहे हैं इनमें सारे गृहस्थ भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, सारे प्रकार की भक्त मिश्रित हैं, और मिश्रित होने के कारण सबका गुणावली अलग अलग होते हैं। तो आदर्श की परिभाषा जो हम समझते हैं तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर में कई प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिस तरह से हमें आदर्श की तरह रहना चाहिए वैसे नहीं रह पाते हैं। और हालांकि भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भक्त के संग करते हैं, फिर भी हमारे अंदर में मत्यांतर और भेदाभेद आ जाते हैं, हम उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये गुणावली ब्राह्मण के तो नहीं होना चाहिए, वैष्णव के तो सवाल ही नहीं उठता। तो एक ब्राह्मण के गुणावली किस प्रकार के हैं, क्योंकि मनुष्य में श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं मगर उससे भी श्रेष्ठ वैष्णव है। तो पहले आज यहां जो बताया है इस चर्चा में कि मनुष्य पहले मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रभुपाद ने शुरू किया, पहले हम मनुष्य बने उसके बाद ब्राह्मण बनने के प्रयास करे, फिर वैष्णव। तो वैष्णव तो सबसे उच्च कोटि के हैं, मगर मनुष्य समाज जब ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण के गुणावली क्या होना चाहिए और किस प्रकार से हम व्यवहारिक जीवन में इसको स्थापित कर सकते।
पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया कि अपने जीवन में हम कैसे ब्राह्मणों के गुणों को विकसित करें। पहले तो मनुष्य कैसे बने, प्रभात बोला कि चार नियमों का पालन करना तो मनुष्य बनना है। एक बार तत्वरूप सॉरी भक्ति दामोदर स्वामी महाराज ने लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ है ना, उसने क्वेश्चन आंसर में उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि डिटर्मिनेशन कैसे आएगी। प्रभुपाद ने बोला कि बाय फॉलोइंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। बोला उसको पालन करने की डिटर्मिनेशन कहां से आएगी, तो प्रभुपाद बोला यू आर लाइक एन एनिमल। पर हम चार नियम ही पालन नहीं कर पा रहे तो हम पशु के समान हैं। तो मनुष्य के स्तर पर हम आएंगे चार नियमों का सख्ती से पालन करके, और जब चार नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, सही तरीके से सुनेंगे। सारी दिक्कत होती है श्रवण से, हमारा श्रवण जब डिफेक्टिव होता है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत श्रवण है। और दूसरा, हम भक्ति शुरू करते हैं भौतिक धारणाओं के साथ, भौतिक धारणाओं के साथ आते हैं, भौतिक धारणाओं के साथ ही भक्ति देखते हैं, एक्सटर्नल एंगल से केवल भक्ति को देखते हैं, एक्सटर्नल दृष्टिकोण से। तो भक्ति में क्या प्रगति है, क्या सफलता है, सब वो बाहरी बाहरी रहता है। तो सौभाग्य होता है भक्तों का जब उनको अच्छे भक्तों का संग मिलता है और फिर वो श्रवण करते हैं। ये अधिकांशतः ऐसे ही रहेगा, ये क्योंकि इस तारा में एक कनिष्ठ समुदाय है, ये कनिष्ठ अधिकारियों का समुदाय है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो जब कनिष्ठ अधिकारियों का समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, उसमें ये लक्षण होते ही होते हैं। आपसी मतभेद, मतभेद मतभेद होना गलत बात नहीं है, लेकिन मतभेद से मनभेद हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है मेरा मत नहीं है, मैं हूं, तो मेरे मत से भेद यानी मुझसे भेद, तो क्योंकि ये मिथ्या अहंकार के कारण है। तो एक कनिष्ठ समुदाय के लक्षण है जो आपने बताया, लेकिन कनिष्ठ मानसिकता से हमें जल्दी से जल्दी मध्यम मानसिकता, अधिकारी की मानसिकता में आना चाहिए। तो ये हम सबके लिए चुनौती है। अगर हम कनिष्ठ मानसिकता में ही रहे तो भक्ति में आनंद नहीं आएगा और इस समुदाय में आपस में झगड़े होते रहेंगे। लेकिन अगर भक्त लोग प्रयास करें, कुछ भक्त भी प्रयास करें, प्रभुपाद बता रहे हैं 18 के तात्पर्य में, सभी लोग सत्वगुण में ना आए, कुछ परसेंटेज सत्वगुण में आ जाए तो पूरे समाज में खुशहाली आ जाएगी। इसलिए कुछ लोग ही ब्राह्मण बन जाए, पूरे समाज में खुशहाली आ जाएगी। कुछ लोग बीड़ा उठा लें, तो इसलिए आए, जो आएगा बीड़ा उठाएगा उसका उद्धार होगा। तो फिर अगर हमारे कुछ लोग मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं तो फिर उस जो समुदाय है उसमें अच्छी भावनाओं का विकास होना शुरू होता है। ये स्टेज है, कनिष्ठ समुदाय से मध्यम अधिकारी समुदाय में जाने में ये टाइम लगेगा, ये ट्रांजिशन फेज है, इसमें लगेगा टाइम। इसमें हमारी सिंसियरिटी पर निर्भर करता है और भगवान की कृपा पर।
इसमें एक और है कि वैष्णव की गुणावली में शास्त्र में वर्णन है कि वैष्णव सारे जीवों में भगवान की स्वरूप को दर्शन करता है, मगर ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं।
ब्राह्मण
ब्राह्मण सारे जीवों में भगवान के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ब्राह्मण क्या है कि तपस्या के द्वारा भगवान की पूजन करते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे शास्त्र में वर्णित है बहुत सारा जो तपस्वी ब्राह्मण होते थे, इवन रावण भी ब्राह्मण ही था, मगर वो आश्रित प्रवृत्ति के थे, मगर उनके तपस्या के फल के कारण उन्होंने बहुत सारा शक्ति अर्जन कर लिया था। तो ब्राह्मण शक्ति तो अर्जन करते तपस्या के द्वारा, मगर वैष्णव है वो सिर्फ विष्णु के उपासना के कारण जो भक्ति के द्वारा अपने जीवन को इतना सरल बना लेते हैं और इतना विनम्र बना लेते हैं कि सारे जीवों के अंदर में भगवान परमात्मा की छवि दिखाई पड़ता है, इसलिए सब में उनकी दया होती है सबसे प्रति।
ठीक बात है। और ब्राह्मण भी दूसरे जीवों में भगवान की प्रस्तुति को देखते हैं, उपस्थिति को देखते हैं। रावण जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसने ब्राह्मण के गुण विकसित नहीं किए। जन्म से ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा, गुणों से चलेगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंद।